الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین میں جو بات ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان کو دو کام کرنے چاہیے، ایک اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی کوشش کرے جتنی اس کے بس میں ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کوشش پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالی سے رجوع کرے. کوئی آدمی اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے کہ میں صحیح معنی میں سچا پکا مسلمان بن جاؤں، تو اسے دو کام کرنے ہوں. ایک ہے کہ اصلاح کی طرف قدم بڑھائے، اپنے اندر جو کمی کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مانگے کہ اللہ، میں اپنی اصلاح کا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. کوئی شخص اگر بے نمازی ہے یا نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے مسجد میں آنے کی اس کے اندر اس کو توفیق نہیں ہوتی، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ ایک طرف تو اپنے آپ کو اپنے آپ پر زبردستی کرے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت چاہے دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو، آدمی زبردستی کر کے مسجد کی طرف نکل پڑے، اور اللہ تعالی سے مانگے کہ اللہ مجھے نماز با جماعت کا پابند بنا دی. یہ دو کام کر لے گا کہ دعا بھی مانگے گا اور مانگنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سے دعا مانگنے کے بعد اس کام کی طرف قدم بھی بڑھائے گا. نہ صرف دعا کافی ہے، نہ صرف کوشش کافی ہے. ایمان والے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، کوشش بھی اور دعا بھی. اگر دعا مانگے تنہا اور عمل کچھ کرے نہیں تو صرف دعا سے بھی کام نہیں بنے گا. یعنی آدمی دعا تو مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے نماز با جماعت کا پابند بنا دے، لیکن جب وقت آتا ہے تو سستی میں گزار دیتا، قدم نہیں بڑھاتا. تو صرف دعا سے کام نہیں. کوئی آدمی دعا مانگے کہ میں، یا اللہ مجھے مکہ پہنچا دیں، اور مکے کے بجائے وہ ایران کا رخ کر لے، تو یہ صرف دعا مانگنے سے اس کا رخ نہیں پلٹے گا. تو کوئی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ضروری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف اپنی طرف سے جتنی انسان کے بس میں کوشش ہے وہ کر لے. تو یہ ہماری انفرادی زندگی کے اندر بھی یہی اصول ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی. محض जबानी तौर पर दुआ मांग लेना भी काफी नहीं है और महज कोशिश कर लेना भी काफी नहीं है, दोनों चीजें मिलकर कोई नतीजा पैदा करती हैं। इंफरादी जिंदगी में भी एक आदमी किसी गुनाह में मुब्तला है तो उस गुनाह के लिए अल्लाह से मांगे भी कि अल्लाह मैं इस गुनाह से बचना चाहता हूं, मुझे इससे बचा ले। ये सिर्फ काफी नहीं बल्कि जब गुनाह का तकाजा पैदा हो तो उस वक्त अपने आप को जबरदस्ती उस काम से रोकने की पूरी कोशिश करें। जो उसके असबाब हैं उस असबाब की तरफ जाने से अपने आप को बचाए। दोनों चीजों का साथ साथ हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, ना दुआ काफी है ना कोशिश काफी, दोनों चीजें जब मिलकर जमा होती हैं तो उससे बेहतर नतीजा निकलता है। हमारी इज्तिमाई जिंदगी का भी यही हाल है। इज्तिमाई जिंदगी में आज आप देखते हो कि सारे मुसलमान अफसुर्दा हैं। क्यों अफसुर्दा हैं? कि वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे मुसलमानों के ऊपर मगरिब की गुलामी मुसल्लत हो गई है और अपने हर फैसले में हम मगरिब की तरफ देखते हैं और उनको अपना माए बाप बनाया हुआ है, उन्हीं के इक्तदा करते हैं, उन्हीं के रंग ढंग इख्तियार करने की कोशिश करते हैं और अपना सब कुछ उनके हवाले कर रखा। उसका नतीजा यह है कि गुलामी की जिंदगी हो रही है। अब इसराइल जो है वो एक शैतान बनकर इफरीत बनकर मुसल्लत है और वो गजा में फलस्तीन में नस्ल कुशी कर रहा है, कत्ले आम कर रहा है। और जब जिस तरह एक वहशी दरिंदा होता है वो जब चाहता है ईरान पे हमला कर दिया, जब चाहे लबनान पे कर दिया, जब चाहे शाम पे कर दिया, जब चाहे दोहा कतर पे कर दिया। इस गुलामी की जिंदगी में इससे कैसे निकला जाए? इससे निकलने के भी यही दो तरीके हैं, एक अल्लाह ताला से दुआ और दूसरे इस गुलामी से निकलने के लिए कोई अमली इकदाम। आपको मालूम है कि इसराइल ने दोहा के ऊपर हमला कर दिया, कतर के ऊपर, सारे 57 इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर होना तो ये चाहिए था, पाकिस्तान की तरफ से करारदाद भी पेश की गई थी कि भाई सब मिलके कोई इत्तेहाद कायम करें और इत्तेहाद कायम करके इसराइल का मुकाबला करें, मगर जो करारदाद वहां से आई, जो ऐलामिया जारी हुआ वो इतना मायूस कुन था कि उससे बेहतर था कि जमा ही ना होते। इतनी ज्यादा उसमें मरूबियत और एहसास कमतरी उसमें मौजूद था। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि माशाल्लाह हमारे मुसलमानों में बहुत से अल्लाह वाले हैं जो इन वाकयात पर तबसरे करने के बजाय अल्लाह ताला से रुजू करते हैं। हम लोग मजलिसों में बैठ के तबसरे तो बहुत करते हैं लेकिन अल्लाह जल्ला जलालहू से रुजू करके कहें या अल्लाह हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, या अल्लाह हम गुलामी में की जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमें इससे आजादी अता फरमा दे, ऐसे दुआ करने वाले बहुत शाज़ो नादिर हैं। लेकिन हैं अल्लाह वाले जो ऐसे मौके पर जब देखते हैं कि हमारे बस में तो कुछ है नहीं, हमारे हुक्मरान जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो उनकी वजह से सारी उम्मत मुस्लिमा جو ہے وہ غلامی کا شکار ہے تو جو اللہ والے ہیں وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. تو شاید انہیں اللہ والوں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ہی ایک ایسا واقعہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا جس کی بہت عرصے سے تمنا تھی آرزو تھی مگر اس کا کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا. اور وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے کرا دیا جس کی پہلے کوئی دور دور توقع نہیں تھی. اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے دونوں پر حملہ سمجھا جائے گا, دونوں مل کر اس کا دفاع کریں. یہ معاہدہ ایک طرح سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پورے تاریخ ماحول میں روشنی کی ایک کرن بن کر نمودار ہوا اور یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہوا الحمدللہ کہ پاکستان کو حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے چنا گیا کہ اگر خدا نہ کرے کبھی حرمین شریفین کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو اس کے دفاع کے لیے سعودی عرب پاکستان سے مدد حاصل کرے گا اور پاکستان اس کی دفاع کرنے کا پابند ہوگا. اور ہم پر کوئی آنچ آتی ہے بھارت کی طرف سے تو سعودی عرب ہمارا ساتھ دے گا. ایک زمانہ تھا جب سعودی عرب کے تعلقات ہندوستان سے اتنے زیادہ قریب ہو چکے تھے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کا استقبال وہاں پر سعودی عرب میں سفیر السلام کہہ کر کیا گیا, یعنی امن کا پیغمبر انڈیا کے وزیر اعظم کو کہہ کر استقبال کیا گیا تھا. اور پاکستان کی اس کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن دکھایا کہ جب پچھلے دنوں پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 دن کی جنگ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کی افواج کو فاتح اور سرخرو بن کر اس جنگ سے نکالا. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ مسلمان دعا تو کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ کوشش یہ ہو گئی کہ ہماری افواج نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے عسکری طاقت کو اپنی دفاعی طاقت کو امریکہ کے تابع بنانے کے بجائے ہم اس کو خود اپنی ذمہ داری پر ایسے ہتھیار تیار کریں جس میں ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. پہلے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں, عرب ممالک جتنے بھی ہیں, ان سب نے اپنی دفاعی طاقت امریکہ کے حوالے کر رکھی ہے. لاکھوں اربوں ڈالر وہ امریکہ کو دیتے ہیں اس کام کے لیے کہ وہ ان کی حفاظت کریں. سارے اسلحہ بھی اسی کے دیے ہوئے, اسی سے خریدے ہوئے, اس اسلحہ کی چابی بھی اس کے پاس, یعنی اگر وہ خود سے چلانا چاہے نہیں چلا سکتے جب تک کہ امریکہ کی طرف سے اس کی چابی نہ لگائی جائے. پاکستان کی افواج نے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اپنی اس امریکہ کے ساتھ نتھی ہونے اور امریکہ کا پابند ہونے سے نجات حاصل کرنے کے لیے خود اپنے اسلحہ خود تیار کیا. اور چین کے ساتھ روابط قائم کر کے چین کی ٹیکنالوجی بھی اختیار کی لیکن اپنے ہاں خود تیار کیے اسلحہ, ایسے اسلحہ تیار کیے کہ اپنے سے 5 گنا زیادہ طاقت رکھنے والی انڈین فوج کو धूल चढ़ा दी और उनके वो तैयारे जिन पर उनको नाज था, राफेल तैयारे जो फ्रांस से खरीदे थे बड़ी कीमती, उसको दूर से ही निशाना बना दिया और तैयारे गिरा दिए और उनके सारे निजाम को मफलूज कर दिया। कोई तैयारा मुकाबले के ऊपर उड़ने के काबिल नहीं रहा। ये कोशिश जो की गई कि हम गुलामी के फंदे से निकलकर खुद आजाद होकर अपना दिफाई इंतजाम करें, ये कोशिश हुई और अल्लाह वालों की दुआएं हुई, तो उसका नतीजा यह हुआ कि भारत को चार दिन के अंदर धूल चटाकर उसको बुरी तरह शिकस्त देकर सारी दुनिया के ऊपर अल्लाह ने पाकिस्तान की एक धाक बिठा दी। उस धाक बिठाने का नतीजा यह है कि आज सऊदी अरब यह कहता है जाओ मेरे साथ और हम दोनों मिलकर एक दूसरे के दिफा करें। वही सऊदी अरब जो कभी इंडिया के को के वजीर आजम को सफीर उस्सलाम कहकर उसका इस्तकबाल करता था, लेकिन उसके ऊपर भी ये बात वाजे हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम के अंदर एक मुल्क ऐसा है जो अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करने के बजाय खुद अपनी कोशिश से अपने असलहात को इस्तेमाल कर सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज भी उसको हासिल है कि वो एटमी कुव्वत। लिहाजा ये मंजर, खुशनुमा मंजर हमारी आंखों के सामने आया कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और हमारे वजीर आजम और हमारे आर्मी चीफ उनके साथ बैठकर ये मुआहदा तय पा गया कि हम एक दूसरे के दिफा के लिए तैयार रहेंगे। तो ये ना समझो कि ये दुआएं जो कभी की जाती हैं वो रायगा जाती हैं। अल्लाह तबारक व ताला दो चीजों को मिलने के बाद अल्लाह तबारक व ताला नताइज जाहिर करते हैं, एक दुआ और दूसरे कोशिश। कुरान करीम ने फरमाया बा आयतु लहुम मस्ततातु मिन कुव्वा, दुश्मनों के मुकाबले के लिए जितनी कुव्वत तुम तैयार कर सकते हो वो तैयार करो, ये हुक्म है कुरान का। तो उसके बाद जब कभी मुकाबला हो जाए तो साबित कदमी से काम लो और अल्लाह ताला से रुजू करो। यही दो काम एक मुसलमान के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से ये एक बहुत अरसे के बाद एक खुशी का और बहुत हमारे लिए काबिल फख्र वाकया दिखाया कि दोनों मुल्कों के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह ये मुआहदा तय पा गया। और हकीकत तो यह है कि सऊदी अरब के साथ हमारे बिरादराना ताल्लुकात तो मुद्दत दराज से हैं, पहले दिन से हैं, और सऊदी अरब हमारा न सिर्फ यह कि एक दोस्त है बल्कि हमारे लिए एक तकद्दुस का निशान है हरमैन शरीफैन की वजह से, लिहाजा उसके साथ दोस्ती उसके साथ कुर्ब तो शुरू से चला आता है। लेकिन ये दिफाई मुआहदा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये दुश्मनों को की साजिशों को खत्म करने का जरिया बनेगा, अल्लाह के रहमत से इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तो अब जो फलस्तीन का मसला है और इसराइल का मसला है कि जो एक दरिंदा बना हुआ है और जिस पर चाहता है वो चढ़ दौड़ता है, तो उसके लिए एक लगाम डालने का अल्लाह ने एक मौका दिया। दूसरी तरफ मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि गजा के मुसलमानों की अभी तक मुसीबत में कोई कमी नहीं आई, वहां पर दिन रात उनकी वहशियाना बमबारी भी जारी है और उन तक पहुंचने के जितने रास्ते इमदाद पहुंचने के जितने रास्ते हैं वो भी बंद किए हुए हैं इसराइल ने दुनिया के सारे कवानीन के बरखिलाफ। एक नाजायज मुहासरा किया हुआ है। बच्चे मर रहे हैं भूख से, औरतें मर रही हैं, बूढ़े मर रहे हैं भूख से मर रहे हैं, और इमदाद के रास्ते बंद किए हुए हैं। इमदाद बहुत अगर पहुंच रही है तो बहुत कम पहुंच रही है, जिसका जो पूरी तरह कारामद नहीं हो सकती। इस मौके पर कुछ अल्लाह के बंदों ने एक कोशिश शुरू की है, वो है एक बहरी काफिला जो रवाना हुआ है, अब इस वक्त समंदर के बीच में है, वो समूद के नाम से, समूद के माना होता है इस्तकामत, तो इस्तकामत के नाम पर, समूद के नाम पर ये बहरी काफिला चला हुआ है तूनिस से, और अभी समंदर के दरमियान है। ये काफिला एक तरह का एक अलामती रद्द अमल है इसराइल की जारहियत के खिलाफ, और इसका मकसद यह है कि जाकर मुहासरा तोड़े, और मुहासरा तोड़कर वहां गजा के लोगों को दवाएं और गजाई सामान फराहम करे, उसके लिए यह काफिला चल रहा है। इसके ऊपर खतरात हैं, इसराइल हमला भी कर सकता है, उसके रास्ते में रुकावट डाल सकता है। इसराइल जो खुद दहशतगर्द है, उसने इस काफिले को दहशतगर्द करार दे दिया, हालांकि बेचारा पुरअमन काफिला है। तो ये कोशिश इस तरह भी हो रही है, ये कोशिश है, और ये कोशिश हमारी तरफ से पूरी हिमायत की मुस्तहिक है और हमारी दुआओं की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए और इसको मंजिल तक पहुंचाए, और ये मुहासरा तोड़ने के अंदर कामयाब हो और फातह बनकर वापस आए। इसकी भी सब मुसलमानों से दुआ की गुजारिश है कि सब इसको दुआ में याद रखें। गजा के मुसलमानों के लिए, बर्मा के मुसलमानों के लिए जिन पर जुल्म हो रहा है, और सारे मुसलमान जहां पर भी जुल्म का शिकार हैं, उनकी नुसरत के लिए, उनके जुल्म को दूर करने के लिए कोई मुसलमान दुआ से पीछे न रहे, हर नमाज में उनके लिए दुआ करें, और इस काफिले के लिए दुआ करें, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान और सऊदी अरब को इस्तकामत अदा फरमा और गैरों की गुलामी से निकालने का जरिया बना दी। और ये कुछ बईद नहीं है कि दो मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा हुआ है, तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मुसलमान मुल्कों को भी तौफीक दे कि वो इसमें शामिल हो। अगर मुसलमान सारे मुत्तहिद हो जाते हैं, 57 मुल्क दुनिया के जो ऐन दुनिया के बीचों बीच आबाद हैं, मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक एक जंजीर है इस्लामी मालिक की, अगर ये आपस में इस तरह मुत्तहिद हो जाते हैं तो किसी की मजाल नहीं होगी कि वो इनको गुलाम बना सके या इनके हुकूक को तलब कर सके। लिहाजा जैसे मैंने अर्ज किया कि कोशिशें एक तरफ और दुआ एक तरफ, हम उस कोशिश में बराह रास्त शरीक होने के काबिल तो नहीं है, हमें हथियार चलाना भी नहीं आता, हमें हथियार का बनाना भी नहीं आता, हम एक आम लोग हैं, लेकिन आम लोग कम से कम अपनी दुआओं का रुख बदलें, अपनी दुआएं जिस तरह अपने लिए करते हैं, अपनी सेहत के लिए करते हैं, अपनी माशी जरूरियात के लिए करते हैं, उस तरह उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, उसके लिए उस तरह पाकिस्तान के लिए दुआ करें, सऊदी अरब के लिए दुआ करें, और जो लोग कि फलस्तीन के अंदर इसराइल के जुल्म और सितम का शिकार है, उनकी नजात के लिए दुआ करें, उनकी फतह के लिए दुआ करें। दुआ बहुत बड़ा हथियार है, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तो किसी भी मुसलमान को दुआ से कम पीछे नहीं रहना चाहिए, और हर वक्त जहन में रखना चाहिए कि हमारे मजलूम मुसलमान भाइयों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, अल्लाह ताला उनसे उनको नजात अता फरमाए। अगर सारे मुसलमान दुआओं पर लग जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कुछ बईद नहीं है कि अल्लाह ताला हमें इस गुलामी की जिंदगी से नजात अता फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।